نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورة البقرة آیت نمبر 183 سے 188 تک کریں گے. پچھلے سبق میں ہم نے بہت امپورٹنٹ آیت پڑھی، آیت بر. اس کو آیت بر اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ لیس البر رہا ہے نا، نیکی کا پتہ چلتا اس میں کہ بر کیا چیز ہے، نیکی کیا چیز ہے، تو اس کو آیت بر کہتے ہیں. تو آیت بر ہم نے دیکھی اور امید ہے کہ آپ نے اس پہ کچھ نہ کچھ ضرور عمل کرنے کی کوشش کی ہوگی. کیسے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، ہم نے کیسے نیک بننا ہے اس آیت کی روشنی میں، تو وہ آپ نے کچھ غور و فکر کیا ہوگا اس میں. دوسرا، ہم نے قصاص کا پڑھا تھا اور شاید ابھی بھی کچھ لوگ کنفیوز ہیں کہ قصاص کیا چیز ہے. باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیں، چونکہ یہاں پہ قتل عمد کی بات ہے تو قتل عمد کو ہی آپ سمجھ لیں تو کافی ہے. یہاں قتل عمد وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کے کسی کو قتل کیا جائے، یعنی پلاننگ کے ساتھ کسی کو مرڈر کیا. تو اب اس کی تین ہی صورتیں ہیں، یا تو قتل کا بدلہ قتل لیا جائے گا، نمبر ٹو دیت لے لی جائے. یہ دیت نہیں ہوتا، دیت ہوتا ہے. دیت مطلب خون بہا، یعنی بلڈ منی جس کو کہتے ہیں، وہ لے لیا جائے. اور اس میں میں نے آپ کو ساتھ ہی معاف کرنے کا بھی کہہ دیا تھا، کیونکہ منی جو ہے، پیسہ جو ہے، وہ کبھی بھی کسی کی جان کا بدل نہیں ہو سکتا. تو یعنی اس نے اس کی جان بخش دی، یہ بھی وارثوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ وارث اگر چاہیں تو، کوئی اور یہ نہیں کر سکتا، کسی اور کو نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی دی، اگر وارث چاہیں تو معاف کر دیں اور بلڈ منی لے لیں. اور اس میں کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ واویلا نہیں کرنا چاہیے کہ انہوں نے دیکھو پیسے کھا لیے، اپنے مردہ بیچ دیا، یہ کر دیا. یہ سیکنڈ آپشن اللہ تعالیٰ نے دیے. اور تھرڈ آپشن ہے کہ ایسے ہی معاف کر دیں، کہ بس جانے ہی دیا اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ ہمیں قصاص چاہیے، نہ ہم نے کوئی دیت لینی ہے، اور ہم ایسے ہی جانے دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہماری بخشش کر دے، تو وہ بھی کفارہ بن جاتا ہے گناہوں کا. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قصاص جو ہے نا، یہ اس کو اگر تم برا سمجھتے ہو کہ ہائے کسی کی جان لے لینی اور ڈیتھ پینلٹی تو ہونی ہی نہیں چاہیے. ڈیتھ پینلٹی کئی جگہ پہ کہتے ہیں نا، ہونی ہی نہیں چاہیے. تو ڈیتھ پینلٹی حیات یا اولی الالباب کہا گیا، یہ بھی زندگی ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے؟ تو تاکہ تم بچ جاؤ. بچ جاؤ کس سے؟ ایسے تمام ان جرائم اور بد امنی اور ان سب چیزوں سے. تو یہ قتل عمد کی تھی، قتل خطا اور شبہ قتل یا شبہ عمد جس کو کہتے ہیں، اس کی ہم بات نہیں کرتے کیونکہ آپ لوگ پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہ یعنی جان بوجھ کے قتل کرنے کی یہاں پہ صرف بات کی گئی. پھر ہم نے وصیت کے اوپر بات کی تھی کہ وصیت جو ہے وہ کرنی پہلے وقت میں تو فرض تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی حصے نہیں بیان کیے تھے. اس کے بعد اب اللہ نے جب حصے بیان کر دیے نا، تو خود اتھارٹی نہیں ہے نا مجھے نہ آپ کو کہ ہم اپنے بچوں کے فیصلے کر کے جائیں کہ کس کو کتنا دینا چاہیے. اب ہم میں اور آپ بیٹھ کے سوچیں میرے مرنے کے بعد کس کو کتنا ملے گا، یہ اب نہیں ہے. آپ سے اللہ نے یہ ذمہ داری ہٹا دی ہے، اب آپ کو نہیں فکر کرنے کی ضرورت. اب بس یہ ہے کہ اگر آپ غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں تو یہ وصیت کر کے جائیں کہ میری جو بھی وراثت ہے وہ اسلامی طریقے کے ساتھ تقسیم کی جائے. ہر مسلمان ملک میں ہے تو کیا، پھر بھی جائیں، پتہ نہیں کس جگہ پہ کون سے قوانین چلتے ہیں یا نہیں چلتے. تو یہ یعنی انسان کے پاس پھر آپشن رہ گئی کہ وصیت کرے، چاہے تو کرے اور چاہے تو نہیں کرے. کیوں؟ اب اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے رکھ دیے. اب اس نے اپنی مرضی سے اگر دینا ہے نا کسی کو، تو وہ غیر وارثوں میں سے کسی کو دے سکتا ہے، और अपने 1/3 माल में से 1/3 माल में से सिर्फ दे सकता है, इससे ज्यादा वो अपनी मर्जियां चला के ये नहीं कर सकता जी मुझे फलां पसंद है, मुझे मेरे मरने के बाद फलां चैरिटी को सारा कुछ दे देना, मेरे बच्चों को तो जरूरत ही नहीं है। नहीं, जरूरत है या नहीं है वो अब खुद इसका फैसला करेंगे कि उन्होंने किसी चैरिटी को देना है या उन्होंने क्या करना है, ये उनका हक है जो अल्लाह ने रख दिया। चाहे औलाद फरमा बरदार है या ना फरमान है, चाहे उन्होंने आपकी खिदमत की है या नहीं की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका हिसाब अल्लाह के साथ अपना है। आपका काम क्या है कि आप विरासत में डंडी ना मारें, विरासत के अंदर कुछ इधर उधर करके ऐसी वसीयतें ना करके जाएं। और जिन जगहों के ऊपर बेटियों को बिल्कुल नहीं दिया जाता और सिर्फ लड़कों को दे दिया जाता है, ये बहुत सख्त अल्लाह की नाफरमानी है। आगे भी हम ये अहकामात सूरतुन्निसा में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, डिटेल में भी आएंगे, इसे फिक्र ना करें। और ये जो किसास का भी है ये भी इंशाल्लाह आगे डिटेल में भी आएगा। तो ये चीज ऐसी है कि जो अल्लाह ताला ने बता दी कि अल्लाह की हदूद में से है, और अल्लाह की हदूद यानी उसकी बाउंड्रीज है, इसको फलांगना तो फिर समझ लें कि फिर इंसान का क्या अंजाम होगा। तो इसलिए कभी ये गलती ना करेंगे किसी की मोहब्बत में आके, किसी के या उसमें आके ये जायदादों के अंदर, विरासतों के अंदर कोई किसी किस्म की भी अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी हो। और सबसे ज्यादा ये चीज है, ये हुक्म है अल्लाह का जो तोड़ा जा रहा है आज सबसे ज्यादा। और आप देख लेंगे आगे इसके बारे में कैसी बड़ी बात आती है सूरत निसा में, इंसान कांप जाता है कि अल्लाह हम तो नहीं जुर्रत कर सकते कि हम तेरी हदों को फैलाएंगे, ये कोई छोटी बात नहीं है। जब अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दे दिया तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, और इसको तोड़ने की फिर क्या वो हो सकती है, उसके लिए अजाब मुहीन कहा गया, अहानत वाला, रुसवा कर देने वाला अजाब है ऐसे इंसान के लिए जो अल्लाह की हदों को तोड़ता। तो अब जब हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो इन चीजों को जहन में रखिएगा, क्योंकि मौत सबके साथ है और ये काम भी सबके साथ होना है। आपके पास बड़ी जायदादें नहीं भी हैं तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, और नहीं कुछ है तो जेवर ही होगा जिंदगी में। जिसको चाहें जितना भी मर्जी दे दें उसमें भी, लेकिन अपनी औलाद में इंसाफ करें। और मरने के बाद तो अब आपकी बात नहीं, अब वो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में ले लिया। आज भी हम बहुत अहम अहकामात पढ़ने वाले हैं, बहुत टाइमली हैं ये भी बातें जो आज हम सीखेंगे, क्योंकि देखें शरीयत दी जा रही है उम्मत मुस्लिमा को। हमने बात की थी ना किबला जब चेंज हो गया तो अब उम्मत मुस्लिमा एक अलग आइडेंटिटी के साथ दुनिया में यानी सामने आई है। इनके लिए लॉज भी अल्लाह ताला ने कुछ आसानी वाले दिए। मैंने आपको जैसे किसास में बताया था ना कि यहूद के यहां सिर्फ माफी थी या फिर कसास था, ठीक है, उनके यहाँ तीसरी चीज दियत की नहीं थी, और माफी का भी उन्होंने बात को हजफ कर दिया हुआ था, उसको भी भुला दिया हुआ था, और सिर्फ आप क्या था, कसास ही रह गया था। तो वो सिर्फ कसास लेते थे। मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने कितनी अच्छी एक सहूलत दे दी, आसानी कर दी। इसी तरह रोजों में जो आज हम पढ़ेंगे उनके यहाँ बहुत मुश्किल रोजे थे पहले अहले किताब में, हमें अल्लाह ताला ने आसानी पैदा फरमा दी हमारे लिए। तो आज हम रोजों के बारे में जानेंगे, रोजों के अहकामात, रमजान के बारे में जानेंगे, कुराने पाक का रमजान से क्या ताल्लुक है वो जानेंगे, दुआ की कितनी अहमियत है वैसे भी और रमजान में तो और भी ज्यादा इसका बात हो जाती है, उसके बारे में जानेंगे। हम ये भी देखेंगे आज के जब ये इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं ना रमजान के, मैं बीमार हूं तो क्या करूं, मैं दूध पिला रही तो क्या करूं, मैं प्रेग्नेंट हूं तो क्या करूं, मैं पास ऐसी बीमारी है या वैसी है, या हम सफर पे जा रहे हैं तो क्या करें, तो ये सारी चीजों के इंशाल्लाह ताला हम आज जवाब भी देखेंगे। एतकाफ की इबादत को भी हम देखेंगे कि एतकाफ की इबादत क्या है, तो वो भी इंशाल्लाह आपके सामने आएगी। और हम ये भी देखेंगे कि मियां बीवी का ताल्लुक आपस में वो क्या ताल्लुक है, इसको अल्लाह ने किससे तशबीह दी है, बहुत प्यारी तशबीह दी है। और एक आखिरी बात जो आज हम देखेंगे इस रुकू के एंड में, वो ये है कि हराम खाना, हराम कमाई इंसान के लिए कितना बड़ा वबाल है और अल्लाह ताला ने उससे सख्त मना किया। ये था ओवरव्यू इस रुकू का, देखते हैं उसको। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनु, ए ईमान वालो, ए लोगो जो ईमान लाए हो। कौन कौन है जो ईमान लाया? हम सब जब कलमा पढ़ लेते हैं तो वी आर अज्यूम्ड कि हम ईमान वाले हैं। कोई ये नहीं कह सकता ओ ये तो ईमान वालों को कहा गया, हम कहाँ ईमान वाले हैं, हमारे अंदर कहाँ इतना ईमान है। नहीं, जब ईमान वाले कह के पुकारा जाता है तो उसमें सब मुसलमान हैं, और उनको चूंकि नए अहकाम दिए जा रहे हैं, उनको एक शरीयत दी जा रही है, तो अल्लाह ताला डायरेक्टली उनको पुकार रहे हैं। और अल्लाह ताला किसी को पुकारे और किसी को निदा दे, किसी को बुलाए कुछ बताने के लिए, तो ये छोटी बात है या बड़ी भी बात है? आपको कोई सदर मुमलिकत बुला लें कि आए मैंने उनको कुछ काम देना है, कोई वजीर बुला ले, कोई गवर्नर बुला ले, कोई बड़ा आदमी बुलाए, तो कैसा लगेगा? अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन जब ईमान वालों को बुलाता है ना, तो उसने कुछ कहना है उनको, कोई बात समझानी है उनको। सोचेंगे फिर हमें एक तो खुशी से एकदम सुनना चाहिए, तवज्जो से सुनना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि हमें क्या कहा जा रहा है। क्योंकि जब देखें कोई हुक्म दिया जा रहा है, अगर आपको समझ ही नहीं आई है तो आप उसमें अमल क्या करेंगे? तो हमें बहुत फोकस्ड हो जाना चाहिए कि मुझे कोई बात कही जा रही है, अल्लाह ताला मुझे कोई बात कह रहे हैं, अल्लाह मुझे पुकार रहा है। ऐसे नहीं हो जाना चाहिए कि जैसे बच्चों को माएं बुलाती हैं तो बच्चे सुनते ही नहीं है, दो चार दफा कहेंगे फिर कहीं जाके जी कहेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। जब अल्लाह की पुकार आए फौरन लब्बैक कहना चाहिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर। ठीक है, इस तरह का रवैया होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारी कितनी अटेंशन होनी चाहिए जब या अय्युहल्लज़ीना आमनु आए, फुल अटेंशन होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है? ए ईमान वालो, अब सुन लें इस बात को मेरे और आप सबके लिए, कुतिबा, लिख दिए गए तुम पर। लिख दिए गए मतलब क्या? जब भी मैंने बताया था कि कुरान पाक में कोई हुक्म लिख दिए गए कह के आ जाए, इसका मतलब है वो फर्ज हो गया, लाजिम हो गया, अब वो करना ही है। जैसे हम कहते हैं कोई चीज बस लिख दिया हमने, कोई डॉक्यूमेंट लिख दिया हमने, तो लिखी हुई चीज को पक्की चीज समझा जाता है। तो लिख दिए गए तुम पे क्या? असयाम, रोजा। बास कहते हैं सौम की जमा है, बास कहते हैं नहीं, सियाम इटसेल्फ रोजे के लिए कहा गया, और जमा नहीं है किसी की। ठीक है, तो रोजे को तुम्हारे ऊपर फर्ज कर दिया गया, कमा जैसा कुतिबा लिख दिए गए, फर्ज कर दिए गए थे किन पर? अल्लदीना, उन लोगों पर, मिन कबलिकुम, जो तुमसे पहले आए, यानी पिछली शरीयतों में भी, पिछले मजाहिब के अंदर भी, जितने भी आसमानी मजाहिब है ना, उनमें रोजा था। अब अगर आपको कोई नहीं मिलता रोजा रखते हुए, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनमें रोजा नहीं था। हाँ, रोजा था, हो सकता है इस तरह नहीं जैसे हमारा रोजा है कि सुबह से शाम तक नहीं खाना पीना, उनके थोड़ी डिफरेंट एक उसकी शक्ल हो सकती है, लेकिन रोजे सबके पास थे, हर शरीयत के अंदर थे जो अल्लाह ने उतारी। ठीक है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तकवा इख्तियार कर लो। अच्छा, अब ये इसमें क्या बताया गया? नंबर वन, कि आपके ऊपर कोई चीज है जो फर्ज कर दी गई, जब फर्ज कर दी जाए तो फर्ज चीज को छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, एक तो ये बात समझ आ गई। नंबर टू बात ये समझ आई कि कोई हम ऐसे नहीं है कि हमारे ऊपर ये डाल दिए अगर रोजे है हमें रखने पड़े, नहीं, सिर्फ तुम्हें ही नहीं रखने पड़े, जितने अल्लाह ने मजाब उतारे सब में रोजे थे, सब ने रखे, और मकसद बता दिया गया रोजे का मकसद क्या है। ये तीसरी चीज बताई गई इसमें, ये रोजा किस लिए रखना है। देखिए, अगर किसी चीज का मकसद पता ना हो ना, और बस ऐसे ही करी जाए कोई चीज, तो उससे वो हासिल नहीं होता जिसकी वजह से वो उसको फर्ज किया गया। मसला है, आपने कहीं जाना है, आपका मकसद क्या है? उस किसी के घर पहुंचना। अब आपने क्या किया, गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी ना स्टार्ट की ना कुछ, बस स्टेयरिंग चलाते गए, ब्रेकिंग दबाते गए, स्टार्ट की भी तो चलाई नहीं गाड़ी, और बस वहीं पे खड़े 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 सारे एक्शंस करते रहे। तो पहुंच गए आप वहां? नहीं पहुंचे। मकसद जो था वो पूरा ही नहीं हुआ यार, गाड़ी लेके सड़कों पे घूमते रहे और उधर ही नहीं गए जहां पे जाने का मकसद था। तो क्या फायदा हुआ ऐसी गाड़ी चलाने का? इसी तरह अगर रोजा रख भी लिया, भूखे प्यासे भी रहे और वो मकसद ही ना पाया जिसके लिए अल्लाह ताला ने रोजे को फर्ज किया है, तो फिर इससे तो कुछ भी नहीं पाया। असल मकसद अल्लाह ताला क्या चाहती हैं कि तुम क्या बन जाओ? मुत्तकी बन जाओ, तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए। अब तकवा समझते हैं कि वो क्या चीज है तकवा, जो अल्लाह ताला हमारे अंदर देखना चाहता है, जो अल्लाह हमें बनाना चाहता है। कौन होते मुत्तकी? सबसे पहले तो ये बात है कि ये लफ्ज जो है ना, हम जैसे वका यकी से है, ये लफ्ज बचाने के माने में भी कहते हैं, मुत्तकी कहते हैं, डरने वाला भी है। तो असल फिर इसका माना क्या है? वकीना अजाबन नार भी कहते हैं, वो भी वका इसी से है। वकीना अजाबन नार कहते हैं ना, रब्बना आतिना में, अल्लाह हमें बचा ले आग के अजाब से, तो वो भी इसी से ही है। तो बचना किस चीज से? बचना क्या? बचने वाला हमें अल्लाह ताला देखना चाहता है, यानी अल्लाह के अजाब से, उसकी नाराजगी से बचने के लिए इंसान उन कामों को करे जिनसे अल्लाह राजी होता है, चाहे उनमें कितनी ही मुश्किल हो रही हो, चाहे उनमें कितनी मेहनत लग रही हो, चाहे वो बिल्कुल दिल को अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन बस सिर्फ इसलिए कि अल्लाह को पसंद है या अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको आप कर रहे हैं। उसको आप कर रहे हैं और आपकी नियत क्या है कि अल्लाह ताला के अजाबों से मैं बच जाऊं, अल्लाह की नाराजगी से मैं बच जाऊं। नंबर टू इसमें क्या है तकवा में? तकवा है रुक जाना उन चीजों से जो अल्लाह की, एक तो नाराजगी का हो गया, उन चीजों को करना जो अल्लाह ताला की पसंद की है, चाहे उनके अंदर कितनी मुश्किल हो। तो एक है अपने आप को बचाना उन चीजों से कि जो अल्लाह की नाराजगी की है, एक है नंबर टू उन चीजों को करना जिनसे अल्लाह राजी हो जाता, इससे इंसान मुत्तकी बन जाता। अब दोनों में चाहे कितनी मुश्किल आ रही, एक एक है गुनाह जिसे अपने आप को रोकना बड़ा मुश्किल है, बहुत दिल करता है कि ये काम कर लें, लेकिन आप बहाने बना बना के वो काम नहीं करते, जस्टिफिकेशंस नहीं देते, आप कहते हैं बस अल्लाह ने मना कर दिया तो नहीं करना, चाहे मेरा कितना ही दिल चाह रहा है, तब समझें कि आप मुत्तकी बन गए। मुत्तकी ये नहीं होता जो लूप होल्स ढूंढता है, जो बहाने ढूंढता है गलत काम करने के, जो जस्टिफिकेशंस दे दे के गलत काम करता है, ये नहीं मुत्तकी होता। मुत्तकी डरने वाला किस तरह है कि वो डरता है अल्लाह नाराज ना हो जाए, ठीक है, वो बचता है अल्लाह ताला के अजाबों को पाने से। तो अल्लाह ताला चाहती हैं कि आप मुत्तकी हो जाएं। अब देखें मुत्तकी रोजे से कैसे बनेंगे? पहला तो क्वेश्चन ये है ना कि रोजा रखना तो, भूखा प्यासा रहना, तो मुत्तकी कैसे बन गए? देखें असल में ये एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है, बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिस है जो हम करते हैं। और क्या करते हैं हम? देखिए आप जब रोजा रखते हैं तो रोजे में भूख भी लग रही होती है, इतनी भूख कई दफा पेट में लगती है और खाना भी पड़ा हुआ है, अंदर आपका कहता है खाना खा लो, खाना खा लो, बहुत भूख है, पेट ये कह रहा है, लेकिन आप अपने आप को क्या बताते हैं? क्या अपने आप को कहते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला की इसमें नाराजगी है, इस वक्त मैं नहीं खा सकता, जब तक इफ्तार ना हो जाए, चाहे इफ्तार तक कितनी भूख लग जाए, आप इतने भूख से हैं, आपके सर में भी दर्द हो रहा है, आप लेट भी गए हैं, आप आपको कोई काम भी नहीं कर पा रहे, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं खाऊंगी नहीं मैं, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, अपने अंदर वो जो आवाज है ना जो आपको रोकती है उसको स्ट्रोंग किया, आपको प्यास लगी है, आपने अपने आप को इतना रोका, चाहे गला क्या कह रहा है कि मैं सूख के कांटा हो गया हूं, लेकिन आप कहते हैं नहीं, इस आवाज को स्ट्रोंग करना है, क्योंकि ये जितनी स्ट्रोंग होगी जब और भी कोई अल्लाह की नाफरमानी का काम आएगा तो ये आवाज फिर अंदर से आपको रोकेगी, जब दिल करेगा कुछ और करने का जिसमें बड़ा मजा आ रहा है, जिसमें बड़ा फन है, और जो सारे ही कर रहे हैं, तब ये आवाज अंदर से आपको कहेगी नहीं। अगर ये आवाज आपकी बहुत लो होगी, कमजोर होगी, तो फिर ये आपको रोक नहीं सकेगी। और अगर ये स्ट्रांग होगी, तो जैसे इसने आपको खाने पीने से रोका, इसी तरह और चीजों से भी रोक देगी। नहीं, ये नहीं करना, बस नहीं करना मुझे, ठीक है। तो इसको सिंपल मैंने आपको करके बताया कि ये ऐसे चलता है ये काम। ये इंसान फिर बच जाता है बुराइयों से, इंसान फिर नेकी के लिए, नेकी को करना उसके लिए आसान हो जाता है। तो इस तरह इंसान मुत्तकी बनता है। अल्लाह ताला रोजा रखवा के इंसान को मुत्तकी बनाना चाहते हैं। आपको पता है अरबों के अंदर रोजा रखने का वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उनको नहीं पता था रोजा क्या चीज होती है। हाँ, वो अपने घोड़े को कहते थे कि हम इसको सोम रखवाएंगे। सोम घोड़े को कैसे रखवाते थे? असल में अरबों में जंगों का, लूट मार का, ये बहुत ज्यादा इनके अंदर रिवाज था। तो ऊंट वहां पे डेजर्ट्स में यूज होते थे ना, लेकिन जब किसी ने जंग करनी है या कहीं लूट मार करनी है, कहीं रात को हमला करना है, तो ऊंट लेकर जाएगा तो वो तो ऊंट कितनी स्पीड कितनी होगी, वो तो जाते थे, हमला करते थे, लूट मार करते थे और भाग के वापस आ जाते थे। तो ऊंटों को तो इस काम के लिए नहीं यूज किया जा सकता, वो तो स्लो एनिमल है, घोड़ा है जो तेज रफ्तार है। अब लेकिन घोड़ा डेजर्ट में सोचें, वो डेजर्ट का एनिमल तो नहीं है, घोड़ा डेजर्ट के अंदर तो वैसा नहीं है हो सकता जैसे ऊंट है। ऊंट के अंदर अल्लाह ताला ने एबिलिटी रखी है ना भूखा प्यासा रहने की, वहां की रेत गर्मी को बर्दाश्त करने की, और वो स्टोर कर लेता है अपने अंदर फूड भी और पानी भी, और कितने दिन इसके बगैर चल सकता है। घोड़े का तो ऐसा नहीं है, तो घोड़े के लिए फिर कैसे उसको यूज करेंगे कि जाए और फिर छापा मारे और वापस आए, और या धूप है या गर्मी है या भूख है या प्यास है बर्दाश्त कर ले। उसके लिए वो उसको सोम रखवाते थे, उसको भूखा प्यासा रहने की प्रैक्टिस करवाते थे। उसका मुंह रेत की तरफ को, जिधर से आ रही होती थी रेत वाली विंड आ रही, हवा आ रही होती थी, उस तरफ को उसका मुंह कर देते थे कि इसके अंदर ये कुव्वत पैदा हो, इसके अंदर ये एबिलिटी आए कि ये इस चीज को बर्दाश्त कर सके। अब देखिए ना, आपने किसी ने कोई टफ चीजें करनी है, टफ एग्जाम देना है, बहुत मुश्किल देना है, तो उसको क्या करवाते हैं? पढ़ाई भी इतनी ज्यादा सख्त वाली करवाते हैं, क्योंकि उसने एग्जाम बड़ा देना है ना। ये गुनाहों से बचना आसान नहीं है, इसके लिए अल्लाह ताला हमें प्रैक्टिस कराते हैं कि कैसे हम बचें इनसे। इस तरह से बचा जाएगा रोजा रख के। इंसान रोजा जब रखता है तो उसके अंदर ये पावर बढ़ती है कि मैंने नो कहना है, अल्लाह की हार नाफरमानी को मैंने नो कहना, जैसे अभी वो खाने और पीने को कह रहा था, ठीक है। फिर और क्या बढ़ता है? अल्लाह ताला की नजरों का एहसास बढ़ता है। देखिए, रोजा ऐसी चीज है जो किसी को नहीं पता चलता कि आपका रोजा है या नहीं है। और आप कह दें मेरा रोजा है, तो चाहे आपने नहीं भी रखा हुआ तो किसी को पता नहीं चलेगा, आप छुपके खाते रहें तो क्या पता चलेगा। और आप कहते हैं मेरा रोजा नहीं है और आपने रोजा रखा, तब भी नहीं कोई जान सकता। तो ये एक ऐसी चीज है कि बंदे का और अल्लाह का मामला है, बंदे को पता होता है और अल्लाह को पता होता है। अब ऐसे वक्त के अंदर कोई इंसान छुप के कुछ खाए पिए, कोई भी ना उसको रोकने वाला, ना कोई कानून आके उसको पकड़ेगा, ना कोई देखने वाला उसको। अब क्या चीज है जो उसको रोकेगी? अल्लाह की नजरों का एहसास कि अल्लाह तो मुझे देख रहा, कोई भी नहीं देख रहा। बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड जॉब पे चले गए, आप घर में अकेले हैं, कुछ भी खाते पीते रहे, किसी को क्या पता चलेगा? कौन सी चीज रोकती है? यही तो कि अल्लाह देख रहा। और यही पूरी जिंदगी में ये लेकर आनी है चीज कि अल्लाह मुझे देख रहा है, किसी और को भी ना पता चले, मैं जो भी कर रही हूं अल्लाह तो मुझे देख रहा है। इस एहसास को स्ट्रॉन्ग करना, और ये भी रोजे के जरिए ही आ सकता है। तो इसलिए रोजा मामूली बात नहीं है, रोजा हमारे लिए बहुत बेहतरीन चीज है। अगर हम इसका मकसद समझे कि अल्लाह ताला हमारे अंदर देखना क्या चाहता है, क्या चाहता है कि डेवलप हो हमारे अंदर, लाल लकुम तत्तकून। मैंने आपको दूसरा माना लाल का क्या बताया, शायद कि तुम तकवा इख्तियार करो, शायद कि तुम मुत्तकी बनो। यानी सब नहीं बनेंगे, क्योंकि तकवा जो है ना, एक बाज लोगों को तो रोजा रखना तो समझ में आता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि रोजे का मकसद ही क्या है, वो मकसद को ही भूल जाते हैं। इसी वजह से आप देखें कि जूं ही शव्वाल का चांद नजर आता है, उसी वक्त ऐसे लगता है कि जैसे कोई कैद से बाहर निकले। सब वो हंगामा करते हैं, वो ईद पे नाफरमानियां होती हैं कि जो शायद पूरा साल भी ना किए, और ये कह के ईद है ना बस, तो जो मर्जी करो। ऐसा फन और ऐसा वो फन की आड़ में ऐसी अल्लाह ताला की हुक्मों को तोड़ा जाता है। तो तकवा तो फिर हासिल ही ना किया, पूरे महीने की ये ट्रेनिंग ली थी कि ट्रेन आपको क्या किया जा रहा है, तकवा हासिल करो, और आपने क्या किया, क्या तकवा मिला? अगर ईद के ऊपर सब कुछ भूल गए तो तकवा तो कुछ भी नहीं लिया, तकवे का तो बैगेज कलेक्ट करना था रमजान में। तो ये आयत उतरी, ये शुरू की आयत है। देखिए इस आयत के अंदर बाज मुफस्सरीन ये कहते हैं कि ये उस वक्त की है, अभी देखिए यहाँ पे रमजान की बात नहीं कोई भी आई, अभी सिर्फ रोजे का कहा गया। मैंने आपको बताया अरबों के अंदर रोजे का पता नहीं था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मदीना में आए तो यहूद को देखा कि वो लोग रोजा रखते थे, 10 मुहर्रम का, आशूरा का रोजा, कि फिरौन से उनको निजात मिली थी। तो इस खुशी में देखिए उनको इतना पता था कि आजादी की खुशी कैसे मनाई जाती है रोजा रख के। हम आजादी की खुशी कैसे मनाते हैं, हमें भी तो गुलामियों से निजातें मिली हैं, अल्लाह ने आजाद किया, आजाद मुल्क दिया, गुलाम थे पहले, तो हम कैसे खुशी मनाते हैं, नाच के, झूम के, गा के। तो यहूद क्या करते थे, फिरौन से अल्लाह ने निजात दी तो रोजा रखवाया, रोजा वो रखते थे इस के शुक्राने में, ठीक है। तो एक तो मुसलमान ने वो रोजा रखना शुरू किया, दूसरा अय्यामे बीत के रोजे, यानी जो 13, 14 और 15 के रोजे हैं ये भी रखते थे मुसलमान, लेकिन ये शुरू का हुक्म था। अभी हम आगे देखेंगे रमजान का जो आया वो आगे है, ठीक है। अय्याम मादूदात, ये दिन है गिने चुने, तो पहले यही फर्ज थे। तो एक मुफसरीन की जो राय है कि ये पहली दो आयात ये पिछले रोजों के बारे में है, तो कि गिनती के चंद दिन है, यानी 3-3 दिन हर महीने के हो गए। फमन कान मिनकुम मरीदन अव अला सफरिन, तो जो कोई तुम में से मरीज है, बीमार है या सफर में है, फ इद्दत मिन अय्यामिन उखर, तो वो फिर अगर इन दिनों में नहीं रख सकता तो वो बाद में रख ले, ठीक है। तो ये उस वक्त भी था इन दिनों के रोजे के लिए। अगर इसको उन दिनों के रोजे के लिए ना रख लिया जाए और ये लिया जाए कि रमजान के बारे में ही है, तो तब भी सेम ही बात है कि अगर कोई मरीज है या सफर में है तो वो बाद में गिनती पूरी करे, यानी जितने दिन उसने मिस किए हैं उनको बाद में रोजे रख के पूरा करे। मरीज में कौन कौन आता है ये देख लेते हैं। मरीज का मतलब ये नहीं है कि थोड़ा सा सर में दर्द हुआ तो भाई रोजा छोड़ दिया, मैं तो रोजा रख ही नहीं सकती, कमजोर बहुत हूँ, ये कोई मरीज की बात नहीं है। बाज माएं इतनी अपने बच्चों के बारे में नाजुक मिजाज होती हैं कि बच्चे बालिग भी हो जाते हैं, कहते हैं कमजोर है, कमजोर है, यानी उसका वेट इतना ज्यादा नहीं है, दुबला पतला है, तो इसलिए तो रोजा रखना नहीं है, स्कूल भी तो इसने जाना है ना। कभी कोई कहता है एग्जाम है, कभी कोई कुछ कहता है, तो ये नहीं। जब कह दिया क्या कुतिबा अलैकुम सियाम, जब फर्ज कर दिए गए तुम पर रोजे, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी वक्त मर्जी से छोड़ें। सिर्फ ये दो एक्सेप्शन है, मरीज और सफर ना, देखें इसमें एग्जाम को एक्सेप्शन है कि आप एग्जाम की वजह से छोड़ दें, ना स्कूल है एक्सेप्शन, ना कोई गेम्स है एक्सेप्शन, ना कोई और कोई ऐसी चीज है कि जिससे आप सोचे कोई इंटरव्यू है किसी की जॉब का, वो कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो ऐसी कोई चीज भी एक्सेप्शंस में नहीं आती सिवाय इन दो के, मरीज और सफर। अच्छा, तो मरीज में एक तो बीमार हो गया, यानी कोई ऐसा बीमार है कि अगर रोजा रख लेगा ना तो उसकी बीमारी बढ़ सकती है, या ऐसा बूढ़ा हो चुका है, इतना रजील बुढ़ापा है, अगर रोजा रख लेगा तो वो तो लेने के देने पड़ जाएंगे, अस्पताल ही ले जाना पड़ जाएगा, इतना कमजोर है, इतना जयीफ है, तो वो भी बीमारी के अंदर ही आ गया। और बीमारी में ही वो आ गई जो पीरियड्स वाली औरतें, उनके लिए भी अल्लाह ताला ने रुख्सत दी है कि वो इस वक्त ना रखें, बाद में रख लें। देखें, याद रखिए कि जो नमाज है ना, इसकी तो माफी है, जो पीरियड के दिनों के अंदर नमाजें मिस हो जाती हैं वो बाद में पूरी नहीं करनी। अल्लाह ताला की कितनी बड़ी मेहरबानी है हम पर। देखिए अगर 6 दिन या 7 दिन या 8 दिन की चलो नमाजें लगा दें, हर दिन 5 नमाजें मिस हो रही, तो 35-40 नमाजें बन जाती। अगर हमें कहा जाता कि बाद में इनको पूरा करो, तो हमारे लिए तो 5 अब वैसे पढ़नी है, और वो 35 भी पूरी, 40 भी पूरी करनी है, और किसी की उससे भी ज्यादा हो गई। अब सोचें कि हम कैसे उनको पूरा करते, नहीं पॉसिबल होता, बहुत बड़ी मुशक्कत हो जाती। तो अल्लाह ताला ने इस चीज को कर दिया कि बाद में सिर्फ रोजा है जिसको आपको पूरा करना है, नमाज को पूरा नहीं करने की जरूरत। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कितनी बड़ी मेहरबानी। और रोजा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। आप सोचें उसकी रुख्सत क्या दे दी, अय्यामिन उखर। अय्यामिन उखर कौन से हैं? ये नहीं कहा कि नेक्स्ट मंथ, नो, अय्यामिन उखर मींस कि कभी भी दूसरे दिनों में। मैंने पूरे साल में अगले रमजान के आने तक 11 मंथ्स हैं आपके पास। अगर आपके मैक्सिमम कितने रोजे छूट सकते हैं, 10 छूट गए होंगे। अगर 10 रोजे भी किसी के छूटते हैं, हर महीने एक एक रोजा भी रखे, तो 10 पूरे हो जाएंगे। लेकिन आप देखें हम उसमें भी इतनी सुस्ती करते हैं। और अफसोस तो ये है कि हमारे यहाँ ये बच्चियों को बताया ही नहीं जाता। जब वो बालिग होती हैं, उनका हैज शुरू होता है, उसी वक्त माओं का ये काम है कि उनको बताएं कि अब क्या क्या चीज है जो वो नहीं कर सकती, और कौन सी चीज है जिसको उन्होंने पूरा करना है बाद में। और उसके बाद होता ही है कि उनके हर साल के रोजे जमा होते जाते हैं। अब जब कुरान पढ़ने आते हैं तो पता चलता है कि वो ये तो हमसे गलती हो गई। अभी भी कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करके सर्दियों के अंदर कितने छोटे दिन होते हैं, उनको पूरा कर सकते हैं, तो उनको पूरा कीजिए। एक अपना हिसाब लगा लें, मिसाल के तौर पे मुझे मसलन 12 साल में मुझे अगर हैज शुरू हुआ और कितने दिन होता था एवरेज, तो उसका हिसाब लगा के कर सकते हैं। और टू बी ऑन द सेफ साइड, आगे भी बात आएगी, फिदिया भी दे दें, वो क्या है वो आगे हम देखेंगे। लेकिन फाइदतुम मिन अय्यामिन उखर, दूसरे दिनों में इसकी गिनती पूरी कर लो। आपने पूरी करनी है। और दूसरा जो सफर में जाता है, अब किसी ने पूछा कि हम तो ऐसे ही सैर पे जा रहे हैं रमजान। भाई सैर करने के लिए पूरे 11 महीने काफी नहीं है कि हम रमजान को ही करें कि हम वेकेशन पे जा रहे हैं और हम अब इसके अंदर रोजा रखें या नहीं रखें। जिसको रमजान की कदर होगी ना, वो कभी भी ये प्लान नहीं बनाएगा कि वो वेकेशन पे जा रहा है रमजान। उसको पता होगा ये कितने कीमती दिन है। जानते हैं आप, बुखारी की हदीस है कि जिसने जानबूझ के एक रोजा भी छोड़ा, सारी जिंदगी भी रोजे रखता रहे, तो उस एक रोजे की कॉम्पेंसेशन नहीं कर सकता, उसको नहीं पूरा कर सकता। क्यों? इसलिए कि वो रमजान का रोजा था। और पूरी जिंदगी जितने भी रोजे रखेगा, अगर रमजान है तो वो तो पहले ही आपके ऊपर फर्ज होंगे, गैर रमजान में रखेगा तो वो तो इक्वल हो ही नहीं सकते। रमजान के एक दिन के बराबर भी दूसरे दिन नहीं हो सकते। इसलिए सफर, अनलेस कि सफर की जरूरत है तो सफर हाँ ठीक है, उसकी इजाजत है, लेकिन जस्ट सफर के प्लान बना लेना बैठे बैठे, चलो हम वहां चलते हैं घूमने, वहां चलते हैं, क्यों उसमें रोजा भी हमारा चलो हो जाएगा, हम बाद में रख लेंगे, रोजे की क्या बात है। तो इसका मतलब समझ ही नहीं है कि रमजान हमें चीज क्या अल्लाह ने दी। ये दो हैं जिनको रुख्सत है। अच्छा, एक और मरीज के अंदर आ गई, प्रेग्नेंट औरतें। प्रेगनेंसी जिसके अंदर इंसान के लिए मुश्किल हो रहा है, अगर वो रोजा रख लेती है तो उसको कमजोरी लाहक हो जाती है, वो अपने काम वाम नहीं कर सकती, अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकती, बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है। अच्छा, हम इसके अंदर भी या हम बाकी बीमारियों में भी अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम उन डॉक्टर से जाके पूछते हैं जो गैर मुस्लिम है। अब गैर मुस्लिम इंसान को तो पता ही नहीं है कि रोजा क्या चीज है, उसने तो कभी रोजा रखा नहीं, वो तो फौरन कह देते नहीं आप ना रखें। ये इंसान को एक तो खुद अपनी तबीयत का पता होता है, ऐसे भी मैंने लोग देखे पूरी पूरी प्रेगनेंसी उन्होंने पूरे रोजे रखे, कुछ नहीं हुआ, लेकिन फौरन उसे डर जाना, ट्राई भी ना करना, बाद में 30 रोजे रखना, पूरी जिंदगियां लोगों की गुजर जाती, वो 30 रोजे नहीं उनके पूरे होते। इसी तरह दूध पिलाने वाली, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, सिर्फ माँ के दूध पे अगर है वो, तो फिर तो हो सकता है चांस के जो है दूध कम हो जाए या कुछ ऐसी बात बच्चे के लिए पूरा ना पड़े, तो फिर वो ठीक है उसके लिए, वो भी मरीज के अंदर ही आ जाती है, फिर उसके लिए रुख्सत है कि वो बाद में रोजे पूरे कर ले। औरतों के साथ हमारे मसाइल इतने ज्यादा है ना, असल में होता ये है कि वो 30 रोजे भी हो जाते हैं, प्लस हर साल के वैसे ही 5-6 भी हो गए, और जिस वक्त औरत की एक उम्र होती है बच्चे पैदा करने की, हर 2-3 साल के बाद एक बच्चा होता है, पिछले रोजे पूरे नहीं होते, अगले रोजे भी और जमा हो जाते, इस तरह करते करते इतना एक इंसान के ऊपर बोझ हो जाता है कि उसने एक फर्ज है जो उसके ऊपर अदा करना जरूरी है और वो नहीं कर। इसलिए हत्ता इम्कान यही कोशिश होनी चाहिए कि हम रोजा रख लें, तो दूध पिलाने वाले भी, अगर उसका बच्चा इतना बड़ा है कि वो सॉलिड्स भी खाने लग गया या डब्बे का दूध भी पी लेता है, तो फिर उसके साथ कुछ ऐसा करके और इसको पूरा किया जा सकता है। तो हर एक इंसान अपनी देख सकता है कि उसकी सिचुएशन क्या है, कि वो क्या कर सकता है, कितना कर सकता है। और मरीज के अंदर भी वो क्रॉनिक मरीज, जिनको जैसे फॉर एग्जांपल किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर की कोई बीमारी है, ऐसी क्रॉनिक बीमारियां जो कभी ठीक नहीं होनी, उनमें भी बाज लोग रोजा रख सकते हैं, बाज नहीं रख सकते। तो ये भी हर एक को अपने अपना देखना है कि वो कैसी सिचुएशन में। तो जो ऐसी क्रॉनिक बीमारियों में कि नहीं रख सकते, कभी भी नहीं रख सकते, बाद में भी नहीं पूरा कर सकते, उनके लिए जो ऑप्शन है वो आगे आ रही है फिदिये की, ठीक है। वअलल्लज़ीना युतीकूनहु फिदयतुन ताआमु मिस्कीन, और वो लोग जो ताकत रखते हैं फिदिया दे सकते हैं वो एक मिस्कीन को खाना खिलाना। अब ये क्या बात है, ये बात है जिस वक्त रमजान के रोजे मैंने आपको बताया फर्ज नहीं हुए थे, इस तरह उस वक्त ये ऑप्शन मौजूद था कि अगर चाहो तो आप रोजा रखो, अगर चाहो तो आपके अंदर ताकत है लेकिन आप नहीं रखना चाहते, गर्मियां बहुत हैं या वैसे ही नहीं रखना चाहते, तो क्या करो, फिदिया दे दो एक मिस्कीन का, यानी एक मिस्कीन को या तो आप खाना खिला दे एक दिन का एक रोजे के बदले, या उसको उतना राशन डलवा दे, ठीक है, आप उसको पैसे दे दें वो अपनी ग्रोसरी कर ले उससे, तो इस तरह से करके एक दिन का एक मिस्कीन का खाना। अब इसको कैलकुलेट करना भी, अगर आप फितराना जिसको कहते हैं, ज़कातुल फितर जिसको कहते हैं, उसके साथ आप करके देख लें, ऑलमोस्ट उतना ही बनता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। मसलन यहाँ पे $10 अक्सर कहा जाता है, तो ठीक है वो एक दिन का आपका बन गया, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपका कितना है। बाकी हर एक की अपनी अपनी वो है, कोई लोग बहुत ही जबरदस्त ऐसा खाना खाते हैं वो उसके मुताबिक ही देंगे। फिदिये को फिक्स नहीं किया गया, ये नहीं बताया गया कि इतना इतने किलो आटा दे दो, इतने पैसे दे दो, इतने दिरहम दिनार दे दो, क्यों नहीं ऐसे किया गया, एक मिस्कीन को खाना खिलाना क्यों कि कहा गया, इसलिए कि यहाँ पे शर्त यह है कि जैसा आप खुद खाना खाते हो ना वैसा आप दो। अमीर आदमी उसका खाना डिफरेंट होता है, गरीब आदमी का डिफरेंट होता है ना, तो दोनों के लिए देखिए अल्लाह ताला ने कैसी सहूलत कर दी। एक बंदा है उसकी मेज के ऊपर 4 खाने लगे होते हैं, एक बंदा है कि जो मुश्किलों से एक खाना भी दाल रोटी भी उसके लिए मुश्किल है, तो वो उसकी अपनी उसके मुताबिक देगा फिदिया। लेकिन ना कितनी हिकमत है सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला के अहकामात में। हम अपने लिए सोचें कि कितनी अल्लाह ताला की हमारे ऊपर एहसान है कि उसने नमाजों का हमें नहीं कह दिया कि हम उसको भी पूरा करें, सिर्फ रोजों का कहा है और वो हमारे लिए आसान है, और कितनी इसके अंदर हिकमत है कि फिदिया वो देना है जैसा आप खाना खाते। सुभान अल्लाह। फमन ततवा खैरन, तो जो कोई भी खुशी से करे कोई नेकी, फहुआ खैरुन लहु, तो वो बेहतर है उसके लिए, यानी अगर ज्यादा खिलाना चाहते हो, ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। कुछ लोग पूछते हैं ना, अच्छा ये बताएं कि एक दिन का खाना मतलब है कि एक टाइम का देना है कि दो टाइम का देना, वैसे तो एक टाइम का ही है, लेकिन अगर हम दो का दे दें तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, जो खुशी से करता है ना कोई खैर का काम उसी के लिए बेहतर है, खैरुल्लहू, अल्लाह तो ने तुम्हारा अजर तो नहीं रख लेना, अगर तुम दो टाइम का खिला दोगे तुम्हारा अजर बढ़ जाएगा, अगर आपने खिलाना एक मिसकीन को है, लेकिन आप एक से ज्यादा मिसकीनों को खिला देते, आप अपने एक रोजे के बदले दो मिसकीनों को खाना खिला देते, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपके लिए अजर उतना ज्यादा है। आप जितना मतलब अच्छा खाना जिसमें कि गोश्त आ सकता है, जिसमें कि, और देखिए ना हर खाने का भी तो एक्सपेंस डिफरेंट है, दाल के, दाल और रोटी के, ये भी एक खाना है, ये भी एक मील है, लेकिन उसके पैसों में और कोई, और गोश्त के पैसों में इसमें फर्क है ना। आप किसी को गोश्त खिला रहे हैं, आप उसके साथ उसको रोटी भी दे रहे हैं, चावल भी दे रहे हैं, मीठा भी दे रहे हैं, वो उसका पैसा बढ़ जाएगा। आप जब खिलाने लगते हैं तो इतनी डिशेस आपने खिला दी किसी को, तो ये भी फाउवा खैरुल्ला उसके लिए अच्छा है। जो करता है वो अपना खुद पालेगा, जितना ज्यादा करेगा उतना ही अच्छा होगा। वह अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमुन, और अगर तुम रोजे रखो तो ये बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम जानते हो। यानी ये पहले उनको सहूलत दी गई थी कि अगर आप नहीं भी रखना चाहते रोजा, कोई बात नहीं, आप फिदिया दे दें। ये क्यों, ऐसे क्यों किया गया था शुरू में? सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला के तमाम अहकामात में ना इतनी हिकमत है। मैंने आपको क्या बताया कि लोगों को आदत नहीं थी, उनको पता ही नहीं था रोजे क्या चीज होते। अरबों में घोड़ों को रोजे रखवाते थे, तो इंसान थोड़ी रखते थे। अब जब अल्लाह ताला ने ये हुक्म देना है ना रमजान के पूरे महीने के रोजे रखने का, उससे पहले क्या है, अभी ये तीन रोजे रख लो हर महीने, और ये आशूरा का रोजा रख लिया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दैट्स इट, कोई और नहीं था। तो अब इनकी प्रैक्टिस कराई गई, और उसके अंदर भी ऑप्शन दे दी गई, अगर नहीं रख सकते कोई बात नहीं, फिदिया दे दो, ठीक है। और बाद में फिर इसको फर्ज किया गया, और देखिए यही है, ये देखिए अल्लाह ताला के अहकामात की जो हिकमत है ना, जब हम समझते हैं कि पहले पहले दिन ही क्या दिया जाता ना, तो शायद मुश्किल होता लोगों के लिए, लेकिन अल्लाह ताला कैसे ग्रेजुअली इस चीज को अल्लाह ताला ने फर्ज किया, और फर्ज करने के में हिकमत कैसे कि पहले उनको फर्ज किया गया था, उसके बाद उनको ऑप्शनल कर दिया गया कि वो नफली है, जो चाहे रखे और जो चाहे ना रखे, अगर नहीं रख सकते कोई मसला नहीं, ठीक है। तो हर चीज के अंदर ग्रेजुअल करके उसको आसान कर दिया गया। अच्छा, अब आप देखें, अब आया रमजान का हुक्म कि रमजान उल मुबारक के रोजे, लेकिन जो इंट्रोडक्शन है ना रमजान का, वो रोजे से नहीं कराया गया। ये जो स्ट्रेंज बात है आपको लगेगी, हमारे जहन में रमजान आता है तो क्या आता है सबसे पहले, रोजा है ना, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कुछ और है जो रमजान के साथ रिलेट किया गया। और पूरे कुराने पाक में ना आप नहीं देखेंगे और कहीं पे भी रोजों की ऐसी डिटेल्स या रोजों की फर्जियत के बारे में, जैसे कि नमाज का आपको पता है हर जगह बार बार आया अकीमुस्सला अकीमुस्सला, लेकिन रोजे का नहीं आया। इसलिए क्या आप देखते हैं कि रोजों को वैसे ही लोग शौक से रखते हैं, है ना, नमाज उनके लिए, फिर भी जो नमाज नहीं भी पढ़ते वो भी रोजे रख लेते हैं आजकल। और कुछ कुर्बे कयामत है तो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, वरना हमने हमेशा देखा है कि शौक शौक से लोग रोजा रखते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया रोजा रखो, ये बेहतर है तुम्हारे लिए। बेहतरी किस तरह है, किस लिहाज से बेहतरी है? इंसान के लिए रूहानी तौर पे भी बेहतरी है, जिस्मानी तौर पे भी बेहतरी है, उसकी दुनियावी एतबार से भी बेहतरी है, और आखरत के एतबार से भी बेहतरी है। सबसे पहले तो ये कि जो भी रोजा रखता है, कहा गया ईमान और एहतसाब के साथ, रोजा रखना ईमान और एहतसाब, मतलब ईमान हो अल्लाह के ऊपर और इस नियत के साथ रखे कि अल्लाह मेरे मुझे इसका अजर दे, कोई और डाइटिंग की नियत नहीं है, अजर की नियत पाने, तो उसके अल्लाह ताला पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देता है, ठीक है। ये कितनी बड़ी बात है, इंसान के गुनाहों की माफी का जरिया बन जाता है। दूसरे क्या बात है कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है हदीसे कुदसी में जो आता है, कि जो हर नेकी है ना, इसका कोई ना कोई अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, कोई किसी नेकी का 70 गुना, किसी नेकी का ये, किसी नेकी के ऊपर इतने में, लेकिन रोजे के बारे में क्या फरमाया, रोजा मेरे लिए, और मैं ही इसका अजर दूंगा। उसको सरप्राइज रखा कि इसका इनाम जब तुम मेरे पास आओगे ना तो उस वक्त तुम पाओगे। इतना बड़ा इनाम है, इसका रिवॉर्ड जो कितना लिखना है ना, ये फरिश्तों को नहीं पता कि कितना लिखना है। फरिश्ते बस रोजा लिख लेते हैं, उनको नहीं पता कि कितना हमने इसका कितना अजर लिखना है। जैसे हाथ नेकी का, भाई फॉर एग्जाम्पल आपने कुरान पाक में एक हर्फ पढ़ा तो 10 नेकियां आपको मिलती है। इनका बताया गया ना, इसी तरह और भी आमाल के रिवॉर्ड्स अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बताए हुए कि इतने इतने लिखने, रोजे का नहीं, क्योंकि वो अल्लाह ने देना है, वो इतनी बड़ी चीज है। तो फरमाया रोजा मेरे लिए, मैं ही इसका अजर दूंगा। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असोम जुन्ना, सोम जो है ना वो क्या है, ढाल है, रोजा ढाल है। किस चीज से ढाल है? वैसे तो गुनाहों से भी ढाल है, क्योंकि इंसान जब रोजा रखता है तो फिर बताया गया ना हमें कि आपसे कोई झगड़े, आपने तो खुद तो इनिशिएट करना ही नहीं है, लेकिन अगर आपसे कोई झगड़ता है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर उसको क्या कहेंगे, मैं रोजे से हूं। तो आपने इन्वॉल्व नहीं हो जाना झगड़े में कि इसने मुझे खींच लिया झगड़े में, इसने बहस पहले शुरू की थी, आपने बहस करनी ही नहीं। रोजे में ये भी ममनू है, झूठ बोलना ममनू है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रोजा रख के झूठ बोलना ना छोड़ा, अल्लाह ताला को उसके कोई हाजत नहीं है, कोई उस परवाह नहीं है उसका खाना पीना छोड़ने की। झूठी बात जिसने करनी और उस पर अमल करना ना छोड़ा, यानी झूठ भी नहीं बोल सकते आप, और भी गइबत और ये सब चीजें कुछ नहीं कर सकते, कोई गालम गलोच नहीं कर सकते, कोई लड़ नहीं सकते। इवन यहां तक भी हदीस में आता है कि शोर शराबा भी नहीं कर सकते, चीखना चिल्लाना, बच्चों को बुला रहे हैं, उसको एक लगा रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, ये भी नहीं कर सकते। और हम रोजे में ज्यादा करते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, मेरा रोजा है, मुझे रोजे में तंग किया। रोजा तो इसलिए है कि आप मेलो डाउन हो जाएं, मतलब डाउन हो जरा, इसलिए नहीं कि और ही ज्यादा चीखने लगे। तो सुभान अल्लाह, तो कितनी चीजों से रोजे ने हमें रोक दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात जिससे ये ढाल बनने वाला है ना, वो है जहन्नुम की आग। इससे ढाल ढाल समझते हैं कि नहीं समझ रहे? ढाल ऐसे ही मैं बोलती जाऊँ आपको पता ना चले। आप देखते थे जंगों के अंदर वो एक शील्ड सी सामने कर लेते हैं वार से बचने के लिए, है ना, तो दूसरे की तलवार से बचने के लिए। समझ लें ये है, यानी ये जहन्नुम की आग से ढाल बन जाएगा, जहन्नुम की आग में नहीं जाने दे देगा, जलने नहीं देगा इंसान को। फिर रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला को मुश्क से ज्यादा पसंदीदा है, यानी जब उसका पेट खाली होता है और उसकी वजह से जो उसके मुंह से स्मेल आती है, बदबू वैसे नहीं दांतों की, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मिसवाक करते थे, रोजे में भी मिसवाक की है और जायज है इसमें, तो वो अल्लाह ताला को इतनी पसंद है। फिर उसके लिए दो खुशियां हैं, एक खुशी इफ्तार के वक्त है जब वो रोजा इफ्तार करता है, एक खुशी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब वो अपने रब के पास पहुंचेगा, जब उससे मुलाकात करेगा, उस वक्त जो अल्लाह ताला उसको रिवॉर्ड देगा रोजे की वजह से, वो इतना जबरदस्त होगा। जैसे आप देखें कि रोजेदार के लिए जन्नत का एक गेट स्पेशली है, उसका नाम है बाबुर रैयान, उससे सिर्फ रोजेदार जाएंगे जो रोजा रखते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कितना बड़ा इकराम उनका करेगा ना, कि ये इनके लिए स्पेशल, और कोई भी नहीं जाएगा, सिर्फ ये जाएंगे। ठीक है, सुभान अल्लाह, ये भी बुखारी में है। और फिर देखें दुनिया की भी, आप उससे बच गए, आप जो ऐसी गुनाह के काम है एक इंसान के जहन के अंदर भी, जब आप रोजे में होते हैं तो ये रहता है ना, क्योंकि जब भूख लगती तो पता चले मेरा रोजा, तो एक जहन में खुद ब खुद एक नेकी की तरफ अट्रैक्शन होती है रोजे में, एक गुनाह से इंसान का दिल दूर होता है सिर्फ रोजे की वजह से। और फिर इसकी वजह से अब जो वो कहते हैं कि जिस्मानी तौर पे भी जी आप सही रहते हैं, बल्कि अब तो वो इसको एक हेल्दी होने के लिए भी इंसान के लिए बताते हैं कि नहीं जी अगर आपने हेल्दी रहना है तो आप रोजा रखा करें। और सुभान अल्लाह, देखिए उन्होंने कहा हफ्ते में 2 रोजे रखे, अल्लाह अकबर। तो हालांकि हमने इस वजह से नहीं रखना, लेकिन इस बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जब हम इन अहकामात को देखते हैं ना, हमें पता चलता है कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने जो भी हमें हुक्म दिया है उसमें हमारी आखरत का तो फायदा है ही, यहाँ पे भी कोई ना कोई खैर है उसके अंदर, हमें चाहे अब साइंस ने आके बताया, उस जमाने में लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन देखो इसमें कितनी खैर है। वो कहते हैं अब इससे ब्लड प्रेशर का जो मरीज है उसका ब्लड प्रेशर सही रहता है, जो शुगर वाले हैं उनके लिए भी शुगर का सही रहता है। वो कहते हैं जो हार्ट के जिनको प्रॉब्लम है उनका हार्ट का मसला भी सही रहता है। इस तरह आपके वेट के मसले सही रहते हैं, आपके जिस्म को थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है कि वो यानी जैसे हम इंसान खाता ही रहता है, बाकी टाइम तो बस सारा दिन खाना पीना कुछ ना कुछ यही चलता रहता है। तो आपकी बॉडी कभी भी आपका मैदा जो है वो रेस्ट पे नहीं जाता, लेकिन जब आप रोजे रखते हैं तो आपके मैदे को भी टाइम मिलता है अपने आप को सही करने का, तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। फिर एक हदीस में आता है कि जो इंसान एक रोजा भी रखता है अल्लाह के रास्ते में, तो अल्लाह ताला उस एक रोजे के बदले, एक एक रोजे के बदले 70 ईयर्स की मसाफत तक उसका चेहरा जहन्नुम से दूर कर देता है। इतनी प्यारी ये हदीस है, इस 70 ईयर्स की मसाफत तक, तो जो जितना दूर होना चाहता है जहन्नुम से वो उतने ही ज्यादा रोजे रखे। फिर इसके अलावा भी, रमजान के अलावा भी रखने चाहिए, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंडे और थर्सडे का रोजा रखते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यामे बीत का रोजा रखते थे, आरफा के दिन का रोजा रखते थे, अगर जो कोई हज पे नहीं गया वो अरफा के दिन का रोजा रखे, फिर अय्यामे जिलहज्जा में जो पहले 10 दिन है उनमें रोजे रखे, 10 दिन नहीं 9 दिन, जो 10वीं को 10 जिलहज को तो ईद होती है, और उनमें भी खास तौर पे अरफा के दिन का तो जरूर रखें, बाकी दिनों के भी रखें। फिर इसी तरह आशूरा का रोजा 9-10 मुहर्रम का रखते हैं या 10-11 मुहर्रम का रख लें। शव्वाल के 6 रोजे, वो तो रमजान के बाद जो भी रखेगा वो ऐसे ही है जैसे कि उसने पूरे साल के रोजे रखे, सुभान अल्लाह। तो यानी और जो अय्यामे बीत के भी रखेगा हर महीने, ये 3 रोजे रख रहा है 13, 14 और 15 के, इसको ये ऐसे ही है जैसे दहर के रोजों का अजर उसको मिलेगा, यानी पूरे जमाने के रोजे उसने रख लिए। तो इससे हमें पता चलता है कि रोजे रखने में हमारे लिए कितनी भलाई है, खैरुल लकुम, अगर तुम्हें पता हो तो। फिर है ना, अब यहां से इल्म की भी फजीलत का पता चलता है ना, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते होते, यानी इल्म का बड़ा फायदा है, जिसको पता चल जाता है ना फिर वो बामकसद रमजान भी गुजारता है, फिर वो जानता है कि इसको करने में मेरे लिए कितनी बड़ी खैर है, और छोड़ने से मुझे वो फायदा नहीं होगा, कर लूं तो कितना मेरे लिए भला है। ये इल्म के साथ ही पता चलता है ना, अब जैसे आपको कितनी बातें आज पता चल गई, तो अब कितना शौक होगा कि कब रमजान आए, कब हम रोजा रखें, कब हम ये दिन गुजारें, और रोजा मेरे लिए कितना अच्छा है। उसके अलावा भी आप कोशिश करेंगे, ठीक है, और ज्यादा देंगे, खैर में बढ़ने की कोशिश करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि मिनिमम कितना है वो मुझे बता दें, ये कहेंगे कि मैं जितना ज्यादा कर सकूं मैं मिनिमम पे क्यों रहूं। मन तत्वा खैरन फहुआ खैरुल्ला। अब आ गई शहरु रमदान की बात, शहरु रमदान लदी उन्जिला फीहिल कुरान। पहले तो रमदान का मतलब मैंने आपको बताया ना, जला देना, तो मुफस्सरीन कहते हैं कि ये महीना गुनाहों को जला देने वाला है, ये इतना मुबारक महीना है, और अल्लाह ताला ने इस महीने को चूज किया है किसके लिए, कुराने पाक के नजूल के लिए, इसको अल्लाह ताला ने खास तौर पे चूज किया, और सिर्फ इसी के लिए नहीं, कुछ तो खास इसके अंदर बात होगी कि तमाम जितनी आसमानी किताबें उतरी हैं ना सब रमजान में उतरे, सुभान अल्लाह, सब रमजान में, यानी तौरात, इंजील, सुहुफ इब्राहिम, ये सब रमजान की है, और इसी में कुरान उतरा। अच्छा एक बात और, हदीस उसके अंदर लिख लें जहां पे मैंने आपको कहा ना कि रमजान जो जला देता है गुनाहों को, तो इसकी ताईद में एक हदीस भी लिख लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 नमाजें एक जुमे से दूसरे जुमे तक और एक रमजान से दूसरे रमजान तक के दरमियान, यानी 5ों नमाजों के दरमियान जो गुनाह होते हैं, और एक जुमे से दूसरे जुमे के दरमियान जो गुनाह होते हैं, और एक रमजान से दूसरे रमजान के दरमियान गुनाहों का कफारा है, यानी जब दूसरा रमजान आएगा तो बीच में जितने भी गुनाह हुए वो कफारा बन गए, ठीक है, जबकि गुनाह कबीरा से बचा जाए बस, ये सही मुस्लिम की रिवायत है। तो इस तरह रमजान आना तो समझे, उसको देख के घबराना नहीं, आए रमजान आ गया, अय्याम मादूदात, गिनती के दिन, ये नहीं सोचना वो अब क्या होगा रमजान आ रहा है तो जैसे पहले ही हॉल पढ़ने शुरू हो जाए, नहीं, शाहरु रमदान अल्लदी, ये तो इतना प्यारा महीना है, ये तो गुनाहों को जला देने वाला महीना है, और ये वो मुबारक महीना है जिसको अल्लाह ने चूज किया कुरान को नाजिल करने के लिए। कुरान के नजूल को यहाँ पे उनजिला कहा गया उसके लिए। अब अनजला युनजिलु इंजाल क्या है, ये है असल में एक दफा नाजिल करना, एक दफा नाजिल करने के लिए क्या आता है, अनजला अलिफ के साथ, और नजला युनजिलु तंजील क्या है, आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके उतारना, तो एक अनजला है और एक नजला है, नजलना भी आता है कुराने पाक में और अनजलना भी आता है, लेकिन यहां पे उनजिला आया जो अनजला से ही है, और सूरतुल कदर में आता है इन्ना अनजलना फी लैलतुल कदर, ठीक है ना, अब जो इनको ग्रामर पता है तो थोड़ा अबवाब का फर्क है लेकिन उससे माने में भी फर्क आता है, अनजला है एक दफा ही उतारना, नजला है थोड़ा थोड़ा करके उतारना, तो दोनों के ऐसे लफ्ज आ गए फिर कुरान पाक में, कुरान के लिए ही आए हैं। देखिए कुरान पाक की तंजील दो तरह से हुई है, एक उसकी तंजील है, एक उसका उतरना है लौहे महफूज से आसमाने दुनिया तक, ठीक है, दूसरा उसका उतरना है 23 ईयर्स के अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आसमाने दुनिया से जमीन पे, जो लौहे महफूज से आसमाने दुनिया पे उतरा वो है इंजाल, और जो आसमाने दुनिया से 23 ईयर्स में थोड़ा थोड़ा करते हुए गुजर उतरा वो है तंजील, नजलना जिसको कहते हैं, समझ आ गई आप बात, यहां पे किसकी बात हो रही है, वो जो लौहे महफूज से आसमाने दुनिया पे एक दफा में ही सारा का सारा उतर गया, ये लौहे महफूज में था ना पहले, तो वो कब उतरा था, वो रमतौन में उतरा, उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये तो वो महीना है जो कुरान के उतरने का महीना है, कुराने पाक जैसी नेमत अल्लाह ताला ने तुम्हें अता फरमाई है जिसमें क्या है, हुदल लिन्नास, सारी इंसानियत के लिए गाइडेंस, अभी नहीं आपने पीछे पढ़ा, सारी इंसानों को कहा गया तुमने खाना क्या है, हलाल और तय्यब खाओ, पूरे इंसानों को कहा गया, सारी इंसानियत की भलाई का पैगाम है, उनकी दुनिया बनाने का भी आखरत का भी, ये अब हम तो दुनियावी काम समझते हैं ना, खाना पीना तो बिल्कुल दुनियावी काम है, उसकी भी गाइडेंस है इसमें, हुदन लेना, हुदन क्या होता है, गाइडेंस, गाइड करना किसी को, तो ये वो महीना है जिसमें वो कलाम उतरा जिससे सारी इंसानियत को गाइडेंस मिले, देखें इंसान अपने लिए तो ये भी नहीं समझ सकते कि उन्होंने खाना क्या है, इसीलिए कोई मेंढक खा रहा है, कोई छिपकली खा रहा है, कोई सांप खा रहा है, कोई खंजीर खा रहा है, इंसानों को तो इतनी भी समझ नहीं, ये भी अल्लाह ताला ने हमें जाब्ता हयात में ये रखा कि क्या खाना है तुमने, और ये दीन इतना मुकम्मल दीन है, देखें सुभान अल्लाह कुराने पाक में अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी से मुतल्लिक जितने इम्पोर्टेंट काम है उन सबको इंक्लूड कर दिया, और उसके बाद अहदीस मुबारका से हमें ये सब चीजें पता चलती हैं जो भी इनकी डिटेल्स हैं कि ये चीज इस तरह से होगी, तो इतना मुकम्मल दीन दिया सारे लोगों की रहनुमाई के लिए, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, सब की हिदायत के लिए, हम अगर कोई हिदायत लेना चाहे, अब मुसलमानों में से भी बाज नहीं लेना चाहते इस कुरान से हिदायत ना, और बाज गैर मुस्लिम भी हिदायत लेना चाहते हैं इससे, तो वो पढ़ते हैं इसको, चाहे उसमें से कोई अपने लिए पॉइंट्स निकाल लें, कोई फायदे की बातें इससे सीख जाएं, चाहे इस्लाम नहीं भी लेकर आए उसको पढ़ रहे हैं, उस पर रिसर्चेस हो रही, लेकिन वो गाइडेंस नहीं है, वो नहीं है चीज जिसके ऊपर अमल करके आखरत में निजात हासिल हो जाए, वो बस अपनी फायदे की चीजें निकाल रहे हैं इसमें से, यहाँ पे ये बड़ी जबरदस्त बात है इसमें, ये कितनी हुदन लिन्नास तब है, हुदायत तब बनेगा जब इसके ऊपर चलेंगे। देखिए आपको कोई राह बता दे, आपको रास्ता अच्छी तरह किसी ने समझा दिया, आप चलना ना चलना तो आपकी जिम्मेदारी है ना। आप कहें नहीं ठीक है उसको कहने दो, वो तो ऐसे ही कह रहे हैं, मैं तो अपने मर्जी से चलूंगी, तो वो तो फिर आपकी मर्जी है। मगर गाइडेंस लेना और उसके ऊपर चलना, यही है जरिया हमें जन्नत तक पहुंचाने का। इसके बगैर नहीं जन्नत में पहुंच सकते। अगर आपने समझ भी लिया लेकिन उस पे चले ही नहीं, कुरान आपने पूरा पढ़ लिया अमल नहीं है, तो पहुंच जाएंगे जन्नत में? नहीं पहुंच सकते। वो जिसने आपको रास्ता बताया उसने तो यही इसीलिए बताया ना कि आप इस पे जाके मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अब आप चलना नहीं चाहते, या उसको बात पे इतबार नहीं है आपको, या उसको अपने लिए फायदा मंद नहीं समझते, तो वो तो फिर आपकी मर्जी होगी। तो ये जो सीखना, ये पहला स्टेप है, अमल है अगला स्टेप। और कई लोग तो समझना ही नहीं चाहते रास्ता, वो कहते हैं हमने घूम ही रहना, वो कहते हैं नहीं नहीं हम खुद ही रास्ता ढूंढ लेंगे, हम खुद अकलमंद है, हमें रास्ता भी ना बताओ। अगर इंसानियत को रास्ता दिखाने की जरूरत ना होती तो अल्लाह क्यों ये कलाम उतारता? अगर हम सब इतने अकलमंद होते कि हमने खुद ही डिसाइड कर लेना था कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है, तो अल्लाह ताला को क्या जरूरत ये तमाम करने की? 23 साल में कुरान उतरा है, वो छोटी बात है ये? और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ कहाँ नहीं इसको बयान करते रहे, ये मामूली बात है। तो हम सोचते नहीं आज नहीं जरूरत है, हम खुद ही अकलमंद, क्या नहीं हमें आता, सब आता है। तो अब वो सब अगर पैदाइशी आता था तो फिर तो ये कलाम जरूरत ही नहीं थी इसकी। तो ये हुदन लिन्नास है, वह बय्यिनात मिनल हुदा। और नंबर 2 इसमें क्या है, ये कुरान पाक की डिस्क्रिप्शन है बताई जा रही। नंबर 1 क्या है, हुदन लिन्नास। नंबर 2 क्या, बय्यिनात मिनल हुदा वल फुरकान। बय्यिनात है इसमें, रोशन निशानियां हैं, क्लियर प्रूफ्स हैं, हिदायत के भी और फुरकान के भी। यानी जब आप इसकी तरफ आओगे तो आप खुद देख के कह दोगे ये भाई कहीं से इंसान का कलाम नहीं हो सकता, जिसमें ऐसी ऐसी बातें हैं, ये इतनी इतनी ज्यूल्स हैं इसके अंदर, ऐसे मोती हैं इसके अंदर, ये इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। ये बय्यिनात आपको नजर आएंगी, हिदायत की बय्यिनात, हिदायत की रोशन दलाइल, बड़ी अच्छी तरह आपके सामने ये बात आ जाएगी। और फुरकान भी है, फुरकान फर्क करने वाले, ये कुरान पाक फुरकान है। ये फर्क किस में करता है, हक और बातिल के अंदर, हलाल और हराम के अंदर, नेकी और बदी के अंदर, बुराई और भलाई के अंदर, सीधे रास्ते में और गलत रास्ते में, इसमें सब में फर्क करके दिखाता है। फुरकान है ना, फारौकाफ, फारूक भी इसी से है, हजरत उमर को लकब था ना, हजरत उमरे फारूक, फर्क करने वाले। तो फुरकान जिसके पास आता है वो फिर फारूक बन जाता है, फिर उसको समझ आ जाती है कहाँ पे चलना है कहाँ नहीं चलना, ये मेरे लिए रास्ता सही नहीं है। ठीक है, और आप देखते जाएंगे जैसे जैसे आप कुराने पाक पढ़ते जाएंगे, वाकई आपको फुरकान मिलेगा, आपको समझ आ जाएगी बहुत अच्छी तरह किधर किधर मेरे लिए नुकसान है और किधर मेरे लिए फायदा है। अब ये जो हुक्म आया ना आगे, जो अब मैं पढ़ने लगी, ये है रमजान के रोजों की फर्जियत का। क्या कहा गया, फमन शाहिदा मिनकुम शहरा फल यसुम। तो जो कोई भी तुम में से देखे इस महीने को, पाए इस महीने को, तो उसको चाहिए कि वो रोजा रखे। ठीक है, अब फाइनल हो गया कि इस महीने में रोजे रखने हैं, ये अब एक मुसलमानों के लिए एक फर्ज करार दे दिया गया। अगर कोई फिर अब छोड़ेगा इसके बाद तो वो गुनाहगार होगा। अब ऑप्शन खत्म कर दी गई, सिर्फ ऑप्शन किसके लिए रह गई है, एक्सेप्शनल केसेस के लिए। एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनके जिनके लिए रुख्सत है। वो कौन से एक्सेप्शनल केसेस, वो वही हैं जो पहले गुजरे, वमन कैना मिनकुम मरीदन, वमन कैना मरीदन औ आला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। तो जो कोई मरीज हो, बीमार हो या सफर में हो, उनके लिए फिर गिनती है दूसरे दिनों में। इसका मतलब है कि गिनती जरूरी है, इसका मतलब ऐसे नहीं हम कर सकते कि अच्छा मुझे तो याद भी नहीं है, अच्छा चलो रख लूंगी जितने भी होंगे जैसे भी होगा रख लूंगी, नहीं, ये नहीं, उनको गिन के रखने हैं। और इससे पहले रोजे कैसे होते थे? इससे पहले रोजे जैसे अहले किताब रोजे रखते थे, इसी तरह मुसलमानों ने रोजे रखने शुरू कर दिए। उनमें क्या होता था कि एक, यानी अगर आज इफ्तार किया और उसके बाद कोई सो गया तो उसके बाद उसका दूसरा रोजा शुरू हो गया। अब वो उठ के खा नहीं सकता था, चाहे अभी सहरी नहीं भी हुई, लेकिन वो नहीं रात को उठ के खा सकता था। तो अल्लाह ताला ने वो भी रुख्सत दे दी कि अब क्या होगा, अब खा पी सकते हैं। वो भी आगे हुक्म आ रहा है, थोड़ा सा चेंज हो गया उससे जो कि पहले हुक्म था अहले किताब के लिए। अल्लाह ने आसानी कर दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसर। अल्लाह तो तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, वो तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं चाहता। जैसे हम रमजान का सोचते ही हो जाते हैं, हाय गर्मी के रोजे, हाय कैसे होगा, हाँ बड़ी गर्मी होगी उस वक्त, तो इस दफा तो रमजान बड़ी गर्मी में आ रहा है। हर साल लोगों का यही रोना होता है, इस दफा तो रमजान छुट्टियों में भी नहीं आ रहा, इस दफा तो स्कूल भी होंगे, जॉब्स भी होंगी, पता नहीं कैसे होगा। कभी भी रोजा रख के किसी को मरते नहीं देखा कि रोजे की वजह से मर गया, तो ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह तो तुम्हारे लिए आसानी चाहता है। देखिए, मरीज को ये नहीं कहा गया कि तो चाहे तुम मर जाओ लेकिन तुमने रोजा रखना। सफर वाले को ये नहीं कहा गया, तुम सफर में हो, जैसा मर्जी सफर हो, तुमने बस रोजा रखना। नहीं, वो छोड़ सकते, उनको रुख्सत दे दी। ये सफर भी वो वाला सफर हो ना कि वाकई सफर हुआ। आजकल बाहर सफर ऐसे हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ से फ्लाइट ली, आगे आपने किसी और जगह पे गए हैं, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ से फ्लोरिडा चले गए, इतना थोड़ा सा सफर है। जहाज का सफर, कोई 3-4 घंटे का सफर, कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसमें आपको भी पता है खुद कि मैं इसमें रोजा रख सकती हूँ, तो आप रोजा रख लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखा भी और नहीं भी रखा। अब ये कैसे पता चलेगा रखें कि नहीं रखें? अल्लाह आसानी चाहता है ना तुम्हारे लिए, तो खुद सोच लें कि कौन सा रोजा है जो मुझे मुशक्कत में डाल देगा। मसलन हम यहाँ से पाकिस्तान जा रहे हैं, अब हमने रोजा रख के बैठ गए, अब मुश्किल क्या होगी कि, या वहां से आते वक्त अक्सर ज्यादा होता है कि हर जगह दिन ही दिन होता है, रात होती ही नहीं। जब आप अपने घर भी पहुंच जाते हो उस वक्त भी दिन होता है, तो खोलेंगे कब? तो आपको 24 घंटे का रोजा हो गया, कोई पता नहीं बीच में टाइम का, कौन सा टाइम जोन आ रहा है, कौन सा जा रहा है। तो ऐसे में बेहतर है फिर छोड़ दें। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कुछ सहाबा कराम को कि एक शख्स के ऊपर साया किए हुए खड़े हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई क्या बात है, क्या मसला हो गया? तो उन्होंने कहा भाई ये तो रोजे से है। आपने फरमाया कि सफर में रोजा रखना कोई नेकी नहीं है, ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, कोई नेकी नहीं है इसके अंदर। यानी लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रखा भी था, तो फिर क्या इसके अंदर हम कैसे करें कि आपने तो रखा और बाज दफा सहाबा भी रखते थे, तो ये फिर यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है कि कोई नेकी नहीं है? ये इसलिए कहा जा रहा है कि जिस वक्त सफर में आपने रोजा रख लिया और रोजा रख के लोगों के ऊपर और डिपेंडेंट हो गए और लोग आपकी खिदमतें कर रहे हैं और भाग दौड़ कर रहे हैं, तो ऐसे रोजे से बेहतर था कि आप रोजा ना रखते, बाद में रख लेते। अब कोई गिरा पड़ा है, हाय इसके ऊपर साया करो, अब सारे दौड़ भाग कर रहे हैं, इसका सामान उठाओ, इसको ये, इस बेचारे ने तो रोजा रखा हुआ, और वो भी कहे कि तुम लोग मेरी पास हेल्प करो क्योंकि मैं तो रोजे से हूँ। इतना बड़ा अगर इशू बना लिया तो फिर तो बेहतर था कि आप ना रोजा रखते। ऐसे एक सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो दिखा कि कुछ लोग रोजे से हैं, कुछ नहीं है। जो रोजे से नहीं थे उन्होंने खैमे लगाए, वो भाग भाग के इंतजाम और कर रहे हैं जितना भी, और लोगों की भी, दूसरों की भी खिदमत कर रहे हैं, और रोजेदार हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपने फरमाया कि आज जो रोजा ना रखने वाले ना, वो सबकत ले गए रोजा रखने वालों पर। इससे क्या पता चलता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है भाई। आप देखें, सफर भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, हर एक बंदे की हिम्मत भी डिफरेंट तरह की होती है। अगर ऐसे ही हो गए कि लोग खेमे लगा रहे हैं, लोग सारा काम करके दे रहे हैं, वो बस पड़े हुए हैं, इसलिए पड़े हुए हैं, रोजा है रोजा है रोजा है, तो इससे तो बेहतर था कि रोजा नहीं रखते। समझ आई आपको बात कि किस वक्त है वो? अब आप खुद अपना सफर देख के समझ सकते हैं ना कि आपने इसमें रोजा रखना आपके लिए बेहतर है या ना रखना बेहतर है। ये कैसा सफर है जिसके अंदर मैं आसानी से रख सकती हूँ कि नहीं रख सकती? ऐसा तो नहीं कि मैं अपने आप को भी मुश्किल में डालूंगी और दूसरों को भी डालूंगी। एक दफा एक सफर था, बुखारी में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से मक्का गए, जब आप असफान में पहुंचे तो आपने पानी मंगाया और उसको अपने हाथ से ऊपर उठाया ताकि सारे लोग देख लें, फिर आपने रोजा वहां पे खोल दिया। ठीक है, हत्ता कि आप मक्का फिर पहुंच गए, यानी अभी इफ्तार का टाइम नहीं था आपने, यानी रोजे को खत्म कर दिया। क्यों? इसलिए कि बहुत सख्त गर्मी थी, बहुत मुशक्कत थी, तो आपने दिखाया लोगों को, देखो मैंने रोजे को खत्म कर दिया, तुम भी खत्म कर दो, मुसाफिर के लिए ये रुख्सत है। तो इसलिए हमें खुद देखना चाहिए कि अब अगर मैं आज रोजा रख रही हूं तो मैं कितनी हद तक अपने लिए भी काम कर सकूंगी और दूसरों के लिए भी बोझ नहीं बनूंगी। ठीक है। अच्छा, अल्लाह ताला ने आपके लिए युसर चाहिए, उसरनी चाहिए। अल्लाह ताला को भी पता है कि गर्मियों के भी रोजे आएंगे, अल्लाह को भी पता है कि लंबे भी रोजे होंगे, अल्लाह को भी पता है कि लोग जॉब भी करने वाले होंगे। क्या सहाबा नहीं करते थे? कोई काम नहीं करते थे, वो रोज बस रोजों के अंदर लेटे रहते थे घरों में या मस्जिद में जाके आराम करते थे। काम, मेहनत, मजदूरी, ये सब चीजें उनकी थी, उनके तो फिजिकल जॉब्स होती थी। आज तो एसी में भी बैठ के कहते नहीं आए, जॉब भी है। और उनके बच्चे भी क्या सोए रहते थे सारा दिन। हम सोचते हैं जब छुट्टियां आएंगी ना तब रोजे आसान है, छुट्टियों के बगैर नहीं। छुट्टियों में आसान किस तरह? कि सारी रात जागते रहो, सारा दिन सोते रहो, इफ्तार के करीब उठो और बस इफ्तारी की तैयारी करके रोजा खोलो। ये तो हमने रमजान को बनाया, तो ऐसा नहीं था। सहाबा कराम ने तो जंगे भी की है रमजान में, उन्होंने कहीं नहीं ये मिलता कि उन्होंने अपने जिंदगी के काम ही सारे छोड़ दिए इसलिए कि रोजे आ गए थे। जहां पे रुख्सत की जरूरत है वहां पे बता दिया गया, मरीज और सफर वाले, बाकी तो अपनी डेली रूटीन के काम करते हैं। तो अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां चाहता है, और आप देखें वाकई जब आप 2-4 दिन रोजा रख लेते हैं उसके बाद तो आसान हो जाता है, फिर आप रूटीन में आ जाते हैं। शुरू में जरा मुश्किल लगती है, उसके बाद तो सब एवरीडे की आपकी एक, यानी आप उसकी आदत के अंदर आ जाते हैं, फिर मुश्किल नहीं होता। और ये हुक्म याद रखिए, सिर्फ रोजे के लिए ये बात नहीं है, हुक्म नहीं, ये बात सिर्फ रोजे के लिए नहीं है। अल्लाह ताला के जितने भी अहकामात हैं ये एक यूनिवर्सल रूल बता दिया गया कि युरीदु युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है। अब ये जो अगला जुमला है ना, वला युरीदु बिकुमुल उसर, ये कहने की क्या जरूरत है? इसका भी तो मतलब वही है, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, अल्लाह तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं चाहता। आसानी चाहता है, इसका तो मतलब यही है कि अल्लाह मुश्किल नहीं चाहता ना, फिर से क्यों कहा गया? अल्लाह तुम्हारे लिए मसलन आप किसी को कहें तुम अच्छे हो, तुम बुरे नहीं हो, तो ये बुरे नहीं अच्छे को मतलब ही यही था कि तुम बुरे नहीं हो, फिर से उसको क्यों कहा गया? ये कब होता है, हम कब करते हैं? जब हमने किसी चीज को ताकीद से कहना हो, रीइन्फोर्स करना हो कि ये बात अच्छी तरह समझ जाओ, इसलिए 2 दफा की गई। हमें यकीन आता है इस बात पे कि अल्लाह हमारे लिए आसानियां चाहता है, जिंदगी के हर मरहले में आसानियां। हमने खुद अपने लिए मुश्किलात खड़ी की हुई है। जब हम दीन से हटते हैं ना तो कभी रसूम और रिवाज, कभी आबाओ अजदाद की तकलीद, कभी जमाने के साथ चलने के लिए, कभी लोगों की डिमांड्स पूरी करने के लिए, हमने हर जगह अपने लिए खुद मुश्किलें खड़ी की हुई हैं। चाहे आप शादी ब्याह पे देख लें, चाहे आप किसी की फौतगी पे देख लें, चाहे आप जिंदगी के और कामों में देख लें, आप देखेंगे कि खुद हमारे बनाए हुए मसले हैं, खुद हमारे बनाए हुए तरीके हैं जिनकी वजह से हम बोझ तले हैं, अल्लाह ने नहीं किया हमें। चाहे आप मेहमान नवाजियां देख लें, कहीं पे भी अल्लाह ताला ने नहीं हम पे बोझ डाला, हमने अपने ऊपर खुद डाले हैं, क्योंकि हमने जमाने के साथ चलना है ना, आज के ट्रेंड्स के साथ चलना है, लोगों के साथ चलना है। अल्लाह तो तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, दीन में आसानी है। अब आसानी का मतलब ये ना ले लीजिएगा हर अल्लाह के हुक्म को तोड़ते वक्त लोग क्या करते हैं, नहीं जी हमने तो पढ़ लिया, दीन में आसानी है, ये क्या तुमने मुश्किल खड़ी कर ली, ये भी ना करो ये भी ना करो। भाई अल्लाह ताला के अहकामात मानने में आसानी है, तोड़ने में आसानी नहीं है। तोड़ते हैं और फिर कहते हैं अल्लाह ने तो दीन आसान किया है ना, तो मैंने रोजा भी नहीं रखना। अल्लाह ने तो दीन आसान किया, अल्लाह को पता है मैं नहीं सुबह उठ सकती इसलिए मैंने फजर भी नहीं पढ़नी। अल्लाह ने तो आसानी की है ना, अल्लाह को पता है अबे मैं जॉब पे हिजाब भी नहीं कर सकती। भाई अल्लाह के अहकामात को तोड़ना नहीं है आसानी, इनके ऊपर अमल करने में आसानी है। बात तो ये हमारा दिल कन्विंस हो तो फिर है ना, दिल कन्विंस नहीं है और ये इसीलिए मुश्किल लगता है। हाँ ये बड़ा मुश्किल, हाँ ये बड़ा मुश्किल, दीन का जहां पे मामला आ जाता है ना वहां पे बड़ा मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल है। अल्लाह ने मुश्किल नहीं खड़ी की, मुश्किलें हमारे अपने दिलों के अंदर है। जब हम कदम उठाने से डरते हैं ना, तब मुश्किल आती हैं। जब हमें ये खौफ होता है कि लोग क्या कहेंगे, जब हम दूसरों की रजा ज्यादा चाहते हैं अल्लाह की रजा से, तब मुश्किल आती हैं। अदरवाइज मुश्किल अल्लाह का दीन नहीं है। हम मैं जो मुश्किलें अपने लिए खड़ी करते हैं, क्योंकि हमने राजी जो सबको करना है, तो फिर मुश्किल तो बनेगी। इसी तरह आप देखें, कयामत के करीब तो मुश्किल होता जाएगा अमल करना। क्यों? इसलिए ही मुश्किल होगा। दीन तो यही है ना, सीन तो सेम है जो 1400 साल से है, वो थोड़ी बदल जाना है कयामत के करीब आगे, कोई मुश्किल है कम आता जाएंगे। प्रॉब्लम ही क्या है कि लोगों के लिए उस सोसाइटी के अंदर रहकर और फिर अपने दीन के ऊपर चलना, ये उनके लिए भारी हो जाएगा। क्योंकि वो उनको ये होगा कि सारा दुनिया तो एक तरफ चल रही है, हम कैसे दूसरी तरफ चल पड़े। हम तो लोगों में अजनबी हो जाएंगे, स्ट्रेंजर हो जाएंगे, हमें तो लोग ऐसे देखेंगे वैसे कहेंगे, तो फिर मुश्किल ही होगा। तो दीन इटसेल्फ आसान है, मुश्किलें हमारी खड़ी की हुई है, ये बात याद रखिएगा। और कभी ये कह के अल्लाह के हुक्मों को ना तोड़े। हमने सुना था एक दर्स में, हमें तो पता है ये मौलवियों ने दीन को मुश्किल बनाया हुआ है, तो बड़ा आसान। आसान उसके लिए जिसका दिल आमादा होता है करने के लिए, वरना किसी के लिए तो रोजा रखना भी इतने मुश्किल है कि जैसे पता नहीं कोई पहाड़ चढ़ना। रोजे ही नहीं रखते वो, रोजे तो वो ही है, एक बंदा रख रहा है दूसरा नहीं रख रहा। रोजे में नहीं मसला, उसके अपने अंदर मसला है। एक के लिए आसानी कैसे हो गई जो शौक से उसके इंतजार करता है, दूसरे के लिए मुश्किल ऐसी हो गई कि हाय कोई बहुत बड़ी एक मुहिम है जो उसने सर करनी है। क्या फर्क है? अंदर फर्क है, रोजा सेम है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने आसानी वाले अहकामात दिए हमें। जितनी पिछली शरीयतें गुजरी हैं उनमें सबसे आसान इस उम्मत मुस्लिमा को अहकामात दिए गए। आपको पता है, देखा नहीं है मूसा अलैहिस्सलाम ने मेराज पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फरमाया था? ये मेरी उम्मत के ऊपर कितनी नमाजें फर्ज थी, वो उतनी भी नहीं पढ़ सके, तो आपकी उम्मत कैसे पढ़ेगी? आप देखिए, हर एक उसके अंदर जितने भी अहकाम आए वो सब इस उम्मत के मिलने वाले अहकाम से ज्यादा मुश्किल थे। इस उम्मत को आसानी दी गई, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। लेकिन अब हम इसको खुद ही मुश्किल अपने लिए करें तो वाली तुख मिलुल इद्दत, और ताकि तुम इद्दत मुकम्मल करो, यानी ये अल्लाह ताला ने आपको महीना दे दिया इद्दत यानी गिनती के दिन पूरे करने के लिए। और अल्लाह ताला की ये भी कितनी मेहरबानी है कि हमें एक महीना दे दिया। अगर हमें ये कह दिया जाता ना कि 30 रोजे आपने रखने, साल में कभी भी रख लो, यकीन जाने हमसे नहीं होना था, ये बहुत मुश्किल हो जाना था हमसे। 5-6 रोजे लोगों से आखिर तक कहते रहते हैं, अभी तक हमारे रोजे ही नहीं पूरे हुए। कहाँ ये 30 रोजे पूरे होने थे? कभी कहना था अच्छा कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, सर्दियों में करेंगे, गर्मियों में करेंगे, सर्दियों में वहां चले गए, वहां से आ गए, मौका ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। ये तो अल्लाह ताला ने फिक्स करके हम पे मेहरबानी की कि एक माहौल ही ऐसा बना दिया। इसीलिए याद रखिए, जब भी कोई आपको नेकी का काम करना हो ना, उसके लिए अपने लिए वक्त को फिक्स करें कि मैंने फलां वक्त में ये करना। ऐसे नहीं कि हाँ कभी कर लूंगी, अच्छा कुरान कभी पढ़ लूंगी, अच्छा वो वक्त आएगा ना जब ऐसा हो जाएगा, फिर इसके बाद करूंगी, उसके बाद करूंगी, उसके बाद करूंगी। ऐसे नहीं, बस कहें कि मैंने इस वक्त शुरू करना है और उस वक्त करें उसको शुरू, तभी नेकियां हो पाती हैं। और अगर टालते रहे ना ऐसे, जब वक्त आया फिर आगे, जब वक्त आया तो आगे, तो फिर कुछ नहीं हो सकेगा। तो इसमें बड़ी हिकमतें हैं। वाली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और ये इसलिए अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं आपको, रोजे के, कुरान इसलिए दिया, तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो इस पे जो अल्लाह ने हिदायत दी है तुमको। देखो अल्लाह ताला ने तुम्हें कैसे रास्ता दिखाया, और ये जो हिदायत का सामान तुम्हारे लिए दिया ना, इसके ऊपर यानी आप कुरान पाक की समझ लें, सेलिब्रेशन का मंथ हो गया ना रमजान, कुरान पाक की बर्थडे का मंथ हो गया ना रमजान, तो इसके ऊपर तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो, अल्लाह ताला की तकबीरें बयान करो। इसीलिए आप देखते हैं कि जब हम शव्वाल का चांद देखते हैं तो उस वक्त फिर हम क्या तकबीरें बुलंद करते हैं, फिर ईद की नमाज के लिए जाते हैं तकबीरात पढ़ते हुए जाते हैं, फिर ईद की नमाज में भी आपने देखा है ना तकबीरात ज्यादा होती हैं आम नमाज से ज्यादा। तो ये सारे तकबीरात के दिन होते हैं, इसलिए क्योंकि, और बड़ी ईद में भी ऐसे ही होता है, इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये जो नेमत दी है रमजान के बाद, हम रमजान के मिलने पे, कुराने पाक के नजूल पे, और अल्लाह ने हमें जो मौका दिया रोजे रखने का, उसके ऊपर नेकी करने का, उसके ऊपर हम अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह ने हिदायत दी तुमको, क्योंकि कुराने पाक हिदायत का सामान है। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर भी अल्लाह की बड़ाई बयान करना, उसका शुक्र करना, ये कितनी बड़ी बात है ना, कितना जरूरी है। और शुक्र इंसान उसी नेमत का करता है, या बड़ाई उसके लिए बयान करता है जिसने उसके ऊपर कोई एहसान किया। जो लोग कुराने पाक को कुछ समझते ही नहीं, बस एक जंतर मंतर की किताब है जिससे सवाब लेना है, बस इतना सवाब मिल गया, अच्छा, इतना हर हर्फ पे इतना मिल रहा है, तो ये अल्लाह ताला ने कोई, यानी सवाब कमाने की कोई मशीन नहीं उतारी हमारे लिए। हिदायत, हिदायत बार बार हिदायत कहा जा रहा है, हिदायत छोड़ के सब कुछ ले लेते हैं, हिदायत ही नहीं लेते। ये प्रॉब्लम है हमारा, सब लेते हैं, सवाब भी ले रहे हैं, बरकतें भी ले रहे हैं, घरों में भी पढ़ रहे हैं, ऊंचे भी उठा के रख रहे हैं, इज्जत भी दे रहे हैं, हिदायत क्यों नहीं लेते? सब कुछ इस कुरान से मिलता है, मगर मकसद इसका क्या है? मकसद सवाब कमाना नहीं, सवाब तो मिल ही जाना है, मकसद है हिदायत लेना, वो तो उसी को मिलेगी जो इसको समझेगा, पढ़ेगा, सीखेगा। और सबसे ज्यादा इसका मतलब कुराने पाक रमजान में ज्यादा कसरत से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये है ही किसका महीना? कुरान का। वलअल्लकुम तशकुरुना, रहा ताकि तुम शुक्र अदा करो। शुक्र भी किस बात का? सबसे पहले कुरान का, फिर उसके बाद नेकी तौफीक मिल जाने का। देखिए, नेकी की तौफीक भी जो है ना, इंसान के खुद बस में नहीं है कोई नेकी करना, ये अल्लाह ताला ही तौफीक दे तो इंसान कर सकता है। आप रोजा रखने का जितना मर्जी सोच लें, अल्लाह ना चाहे तो आप रख ही नहीं सकते। आप कुरान पढ़ने का सोच रहे हैं, अल्लाह ना चाहे तो आप पढ़ ही नहीं सकते। तो इसलिए कि अल्लाह तूने हमें ये तौफीक दे दी, ये महीना दे दिया, इसमें कुरान दे दिया, कुरान पढ़ने की तौफीक दे दी, इबादत की तौफीक दे दी, तो इसके लिए हम शुक्र अदा करते हैं। और इसी के ऊपर यह हदीस में आता है ना कि जो इस कुरान के साथ कयाम करेगा रमजान की रातों में, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाह माफ फरमा देते हैं। यानी अल्लाह ताला ने रमजान में दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो रख दी हैं, एक कुरान और एक रोजा। ठीक है, अब इसके अंदर से कुराने पाक के साथ कयाम करना ऑप्शनल रखा और रोजे को फर्ज किया, क्योंकि अल्लाह को पता है कि हर कोई नहीं कर सकेगा। और इसीलिए हम तरावीह पढ़ते हैं। तरावी में क्या है, ये कयामुल लैल की जितना ही अजर मिलता है। वैसे तो कयामुल लैल ऐसे है कि आप रात को किसी पहर में उठे और आपने कयाम किया, नवाफिल पढ़े, लेकिन ये जो हम ईशा के साथ ही पढ़ लेते हैं, ये भी उतना ही अजर इसका रमजान में, ये अल्लाह ताला की तरफ से खास मेहरबानी है कि आपने उसी वक्त भी पढ़ लिया तो आपको कयाम का अजर मिल गया। तो ज्यादा कोशिश क्या करनी चाहिए, कुरान के साथ वक्त गुजारने की, कुरान के ऊपर तदब्बुर करने की रमजान में, कुरान पाक के जितनी भी आप इससे हिदायत ले सकें, इसको समझ सकें, इसकी फिर तिलावत कर सकें। हम सिर्फ तिलावत को काफी समझते हैं, हम कितने सिपारे खत्म कर लें, कितना कुरान खत्म कर लें, भाई हिदायत तो, हिदायत का सामान अल्लाह ने उतारा है इस महीने में। पूरा महीना गुजर गया, कुरान तो दो चार खत्म हो गए, लेकिन हिदायत फिर भी ना मिली, समझ ही ना आई कि रास्ता क्या है हिदायत का। तो देखिए ना, हम वो ही वाली फिर बात आ गई कि हम सारी जगह पे गाड़ियां चलाते रहे और जिधर मंजिल है उस पर फिर भी ना पहुंचे, तो फायदा क्या उस ड्राइविंग का? उससे तो हमें मंजिल पे पहुंचना था, हम घूम घाम के आ गए। तो जरूरी है कि ये ना देखा करें कि कौन से मस्जिद में कितनी स्पीड में पढ़ाया जाता है, या कौन सी मस्जिद में 20 पढ़ाई है, कौन सी मस्जिद में 8 पढ़ाई जा रही है। बात ये है कि ज्यादा लंबा जितना भी आप कयाम कर सकती हैं वो करें, स्पीड्स को ना देखें। हम देखते हैं ना स्पीड में किसने ज्यादा कर, कितना टाइम आपने गुजारा। ठीक है, ऐसे तो अल्लाह ताला ने निस लैल का भी फरमाया, अबिन कुस, इससे कम कर लो कुछ, यानी एक तहाई हो गया, एक तहाई तक तो कम से कम इंसान करे ना रात के। वैसे तो ऑप्शनल है, नवाफी उसमें से है, नफली इबादत में से है, लेकिन कम से कम इतना तो इतमाम करे, तभी ये बात बनती है ना कि जो कयाम करता है रमजान की रातों में, अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह माफ कर देता, तो कम से कम उसमें तो शामिल हो जाए। और अगर बस 5 मिनट पढ़ा और बस भाग गए, और इतनी स्पीड में पढ़ा कि बस आधा घंटा पढ़ा, 1 घंटा पढ़ा, वो तो फिर कयाम ना हुआ। आप ठीक है, आप मस्जिद में जाके पढ़ते हैं, फिर घर में भी आगे करें, सहरी से थोड़ा पहले उठ जाएं, अब जिस जो आपने बनाना है उसको पहले से तैयार करके थोड़ा रखें, ताकि खाना बनाने में ज्यादा वक्त ना लगे और उस टाइम को कयाम में गुजारे। वो तो बहुत ही प्यारा टाइम होता है, जिसके अंदर अल्लाह ताला बख्शिश फरमाते हैं, अल्लाह ताला दुआओं को कबूलियत करते हैं, फरिश्ते भी सहरी खाने वालों के लिए दुआएं करते हैं। तो इसलिए उस वक्त में उठ के सारा वक्त किचन में ना गुजारते, सहरी को पहले से रात से कुछ ना कुछ उसके हाफ काम करके रखे। अब अव्वल तो इतनी लंबी सहरियों की जरूरत नहीं होती कि हम उसमें ही सारा टाइम गुजारते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ताकि तुम शुक्र अदा करो ये जो तोहफा मैंने तुम्हें दिया, इसके ऊपर, हिदायत की नेमत के ऊपर। ठीक है, कि ना इंसान को हिदायत मिल जाए ना, तो समझ लें कि उसके लिए जन्नत आसान हो गई। हिदायत ना मिली और लॉस्ट होके अगर जिंदगी गुजारती ना, तो फिर किधर पहुंचेंगे सोचें।